रब्बुकुम अल्लज़ी युस्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, तुम्हारा रब वो है जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। वो तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है और समंदरों में मुसीबत पहुंचते ही जिन्हें तुम पुकारते हो सब गुम हो जाते हैं, वही अल्लाह बाकी रह जाता है। फिर जब वो तुम्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो और इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। तो क्या तुम इससे बेखौफ हो गए कि तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर पत्थरों की आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए किसी निगहबान को ना पा सको? क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए कि अल्लाह फिर तुम्हें दोबारा दरिया के सफर में ले आए और तुम पर तुंदो तेज हवाओं के झोंके भेज दे और तुम्हारे कुफर के बायस तुम्हें डुबो दे, फिर तुम अपने लिए हम पर इसका दावा करने वाला किसी को ना पाओगे? यकीनन हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी और इन्हें खुशकी और तरी की सवारियां दी और इन्हें पाकीजा चीजों की रोजियां अता की और अपनी बहुत सी मखलूक पर इनको फजीलत दी। ये थी आयत नंबर 66 से 70, 66 से 70। इसका उनवान लिखेंगे हम, ए इंसान अपनी कदर को पहचान। अल्लाह ताला ने इंसान को दी जाने वाली इज्जत की बात की और वो इज्जत किस वजह से थी? शऊर और इरादे की वजह से। कायनात में आप देखिए कि जानवरों का भी जिस्म वैसा है जैसे इंसानों का, उनका भी गोश्त है, इंसान का भी गोश्त है, जानवरों की भी हड्डी होती है, इंसान की भी हड्डी है, और बेसिक ऑर्गन्स भी सबके मिलते हैं, कान, आंख, जुबान, दिल, दिमाग। फर्क किस बात का है? कौन सी चीज है जो इंसान को बुजुर्गी देती है? वो क्या है कि अपने इरादे को इस्तेमाल करके, अपने शऊर को इस्तेमाल करके अल्लाह को पहचाने। ये जानवर तो हुक्म के बंदे हुए हैं, ये ऐसी जैसे मशीनें हैं। आप एक मशीन के अंदर कोई चीज डाल देते हैं, वो उस तरह काम करती रहती है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने च्वाइस दी कि तुम अल्लाह को मानो कि ना मानो। इसके बाद जब इंसान मानता है तो फिर उसको अल्लाह ताला इज्जत देते हैं, और इंसान को जो इज्जत दी गई उसकी एक और बहुत बड़ी दलील है कि पूरी कायनात इंसान की खिदमत कर रही है। रोज हजारों इंसान मरते हैं, उससे सूरज को जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता, चांद को जरा बराबर फर्क नहीं पड़ता, और अगर एक दिन सूरज ना निकले तो आप देखिए कि कितने लोग मर जाएं। ये बहुत बड़ी दलील है कि जिस जात के लिए अल्लाह ताला ने इतना कुछ पैदा किया, जिसको इतनी इज्जत दी, तो फिर वो इंसान अपनी इज्जत को क्यों नहीं पहचानता? यौमनादुकुल्लाउनासिम, जिस दिन हम हर जमात को उसके पेशवा समेत बुलाएंगे, फिर जिनका भी आमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया वो तो शौक से अपना नाम आमाल पढ़ने लगेंगे और धागे के बराबर जर्रा भर भी जुल्म न किए जाएंगे। वमन का नफी हाजी आमा फहुव फिल आखिरती आमा फदल्लु सबीला, और जो कोई इस जहान में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा और रास्ते के एतबार से भटका हुआ रहेगा। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 71 से 72 है, इसका उनवान हम लिखेंगे दुनिया का अंधा आखिरत का अंधा। ये कौन से अंधेपन की बात है? ये अल्लाह के दीन से अंधापन है। अल्लाह की रहनुमाई से फायदा उठाने की बजाय आंखें बंद करके अपने बड़ों के पीछे चलते जाना, दलील के बगैर अपने आप को अच्छे कामों के लिए तैयार करते जाना, ये दुनिया का अंधापन है। अल्लाह ने आखिरत में जो इंसानों के दर्जे किए हैं वो इसी बुनियाद पे होंगे कि कौन दुनिया में अल्लाह के दीन की रोशनी में चला, कल वहां उसको आंखें मिलेंगी, और जो दुनिया में अंधा रहा उसको वहां भी अंधा किया जाएगा। सूरह तौहा में आप इसकी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की मिसाल पढ़ेंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दें। वइन कादू, ये लोग आपको इस वही से जो हमने आप पर उतारी है बहकाना चाहते हैं कि आप इसके सिवा कुछ और ही हमारे नाम से घड़घड़ा लें, तब तो आपको ये लोग अपना दिली दोस्त बना लेते। अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो बहुत मुमकिन था कि आप इनकी तरफ कदरे मायल हो ही जाते, फिर तो हम आपको भी दोहरा अजाब दुनिया का करते और दोहरा ही मौत का, फिर आप तो अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार भी ना पाते। ये तो आपके कदम इस सरजमीन से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको से निकाल ले, फिर ये भी आपके बाद बहुत कम ठहर पाते। ऐसा ही दस्तूर इनका था जो आपसे पहले रसूल हमने भेजे, और आप हमारे दस्तूर में कभी रद्दो बदल होता न पाएंगे। ये थी आयत नंबर 73 से 77, इसका उनवान लिखिए ये आपको हक से बहकाने वाले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सख्त तरीन आयात थी ये। अगर आप इसके तर्जमे को शऊर से सुन रहे थे कि अगर आप इनकी तरफ झुकेंगे जो अल्लाह की दीन की तरफ नहीं झुक रहे, तो हम आपको दूसरे लोगों से दुना अजाब देंगे। आप बताइए, जब अल्लाह के नबी को ये बात है तो फिर हमारी जब तवज्जे और हमारी इंक्लाइनेशन और हमारी मोहब्बतें ऐसे लोगों की तरफ होती हैं कि जो अल्लाह ताला के दीन के दुश्मन हैं या अल्लाह के दीन को बदलने की कोशिशों में या उसको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, फिर कितने करीब होते हैं उस वक्त हम अल्लाह के अजाब के। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी मोहब्बतों और नफरतों का मेयार अल्लाह का दीन बन जाए। अकीम सलात अली दुलू के शम्स इला गसक इल्लैल, नमाज को कायम करें आफ्ताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फजर का कुरान पढ़ना भी यकीनन फजर के वक्त कुरान का पढ़ना हाजिर किया गया है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद की नमाज में कुरान की तिलावत करें, ये ज्यादती आपके लिए है। अन करीब आपका रब आपको मुकामे महमूद में खड़ा करेगा। ये थी आयत नंबर 7-9, इसका उन्वान है जितना बड़ा मुकाम उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इन आयात में दो बातें थी, पहली चीज़ थी फजर के कुरान की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ फरिश्ते जो रात के अमाल लिखते हैं वो फजर के वक्त अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि तुमने बंदों को किस हाल में पाया, तो वो कहते हैं कि हमने देखा कि वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे। कहा जब गए थे तो क्या कर रहे थे, कहा उस वक्त असर की नमाज पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला उनकी इस गवाही से खुश होकर कहता है कि मैंने इनके बीच के गुनाहों को माफ कर दिया। यही खुशखबरी दूसरी तरफ है, यहाँ फजर के कुरान की बात है और रात की तहज्जुद की बात है। मैं सोचती हूँ कि हम सब कितने खुशकिस्मत हैं इस वक्त, यहाँ तो सुबह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथियों की कुछ तादाद ऐसी जो ऑनलाइन पे सुनते हैं, और उनमें से अक्सर लोगों के पास इस वक्त फजर का वक्त होता है या उससे करीब का वक्त है। और जो फीडबैक मुझे आ रहा है कि लोग इस वक्त पे इतने खुश हैं कि जो फोकस उस वक्त होता है, आप खुद एक अच्छी आवाज में फजर के करीब का जो वक्त उसमें तिलावत करें तो आपको अपने दिल के ऊपर उसका असर महसूस होता है। बाकी रह गई बात मिनल लैली फतहज्जुद भी, तो रात की बात हुई तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है ना। अब ये जो आखिरी 3 पारे हम रातों में करना चाह रहे हैं तो शायद इसमें भी हमारे दिल के ऊपर कोई एक गहरी चोट पड़ेगी, तो अल्लाह ताला ने हमें ये मजे चखाए। शायद हम वैसे इबादत कर करके जागने के आदी हो चुके होते हैं, लेकिन जो कुरान और इल्म का सफर है वो तो बंदे को वाकई दूसरे से बेनियाज करता है। और मैं इसकी आपसे दलील मांग सकती हूँ कि जो कुरान सुनते वक्त आपके दिल की कैफियत और आपका फोकस होता है, क्या आम नफिल पढ़ते वक्त ये होता है? जब सिर्फ सादा कुरान पढ़ रहे होते हैं तो क्या आपके वो दिल की हालत होती है जो कुरान की मजलिस में होती है? इससे पता चलता है कि सिर्फ इबादत कर लेना वो मंजिल नहीं है जिसको हम पाना चाहें। बाज दफा इंसान इल्म के सफर से वो चीज पा लेता है जो सिर्फ इबादत से नहीं पाता। इसीलिए तो आपने फरमाया कि एक आलिम को 70 आबिदों के ऊपर फौकियत हासिल है, और शैतान को आबिद नहीं बुरे लगते, उनसे तो वो खूब खुराफात कराता है, इबादत के नाम पे न जाने क्या क्या उनसे बिदात कराता है, लेकिन आलिम जो होते हैं जिसको अल्लाह इल्म दे देता है उससे शैतान बहुत डरता है। तो अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रमजान की रातों में हमारे इस इल्म के सफर को इस तरह से हमारी जिंदगी में शामिल कर दे कि हम फिर बाद में भी इसके आदी बन जाएं। वकुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिदकिन वखरिजनी मुखरज सिदकिन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और दुआ करें कि मेरे परवरदिगार मुझे जहां ले जा अच्छी तरह ले जा, और जहां से निकाल अच्छी तरह निकाल, और मेरे लिए अपने पास से गलबा और इमदाद मुकर्रर फरमा। आमीन। वकुल जाल हक वजहकल बातिल, और ऐलान कर दे कि हक आ चुका और बातिल नाबूद हो चुका, और यकीनन बातिल था ही मिटने वाला। ये थी आयत नंबर 80 से 81। इन दोनों आयतों का टॉपिक है अल्लाह के मंसूबे की तकमील होती है। अल्लाह ताला ने इन आयात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब हिजरत की खुशखबरियां देनी शुरू कर दी। मक्का में रास्ते तंग हो रहे थे, या आप कह लें जो काम वहां करना था वो कर चुके, अब वहां और कुछ खैर नहीं दिखी तो आपको मदीना की तरफ लाना पड़ा, और आपको ये दुआएं सिखा दी कि जहां से जाऊं वहां खैर से जाऊं, जहां जाऊं वहां खैर से आऊं। और हमारी भी यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह तू हमें जहां ले जाना चाहे ले जा, जहां हमारी जरूरत है वहां हमसे काम करा ले, और हमारे जाने के साथ बातिल खत्म हो और हक आए। अल्लाह के फतह मक्का के मौके पे अपने हाथ मुबारक से वो कबूतरियां और वो बुत तोड़ रहे थे जो मक्का वालों ने वहां रखे हुए थे, और साथ ही आपकी जुबान पे यही आयत थी कि कुल जाल हक व जहकल बातिल। मैं इस बात को बड़े रश्क से सुनती थी और पढ़ती, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमारी भी जिंदगी में कोई ऐसा मुकाम आए कि जमीन के किसी टुकड़े से बातिल जाके हक आ जाए। अब देखिए बातिल नजरियात जब आम होते हैं तो हक की चोट अल्लाह के कलाम के जरिए जब वहां पहुंचती है तो बातिल जाता है ना। जितना कुरान का इल्म आम होता जाता है आप देखते हैं कि लोगों की जिंदगियों में एक अच्छी चेंज आती है। तो अपने लिए भी अच्छी सी दुआ मांगे कि अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी अपनी जगह से बातिल को मिटाने वाले और हक को लाने वाले बन जाए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान जो हम नाजिल कर रहे हैं मोमिनों के लिए तो सरासर शिफा और रहमत है, हाँ जालिमों को बजुस नुकसान के और कोई ज्यादती नहीं होती। और इंसान पर जब हम अपना इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और करवट बदल लेता है, और जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो मायूस हो जाता है। कह दीजिए हर शख्स अपने तरीके पर अमल कर रहा है, जो पूरी हिदायत के रास्ते पर है इन्हें तुम्हारा रब भी खूब जानता है। ये थी आयत नंबर 82 से 84, 82 से 84, इसका उन्वान क्या है, ये कुरान दिलों के लिए शिफा। और दूसरा उन्वान लिखेंगे हर बंदा अपनी सोच पे मुतमईन है। ये दो बहुत बड़ी हकीकतें हैं। कुरान में शिफा है, रहमत है बीमारियों से, रूहानी, नफसियाती और अखलाकी। लेकिन एक नफसियाती बीमारी जिसका तذکرہ आगे कर दिया गया, और वो क्या कि हर बंदा जिस बात पे खुद चल रहा होता है उसको बस वही ठीक लगती है। ना किसी एक की सोच ठीक हो सकती है, ना किसी के नज़रियात ठीक हो सकते हैं। बात वही ठीक होगी जो अल्लाह के कलाम और नबी की सुन्नतों के मुताबिक होगी। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला तू हमारे जहनी सांचे को इस कुरान के ताबे कर दे, ना कि हम अपनी सोचों के ताबे इस कलाम को करने लगे। व यसलूनक अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्री रब्बी। और ये लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप जवाब दे दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया, और अगर हम चाहें तो जो वही आपकी तरफ हमने उतारी है सब सल्व कर लें, फिर आपको इसके लिए हमारे मुकाबले में कोई हिमायती मुयस्सर ना आएगा सिवाय आपके रब की रहमत के, यकीनन आप पर इसका बड़ा ही फजल है। कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और कुल जिन्नात मिलकर इस कुरान के मिसल लाना चाहें तो इन सबसे इनके मिसल लाना नामुमकिन है, तो गोया कि वो आपस में एक दूसरे के मददगार भी बन जाए। हमने तो इस कुरान में लोगों के समझने के लिए हर तरह से तमाम मिसालें बयान कर दी, मगर अक्सर लोग इनकार से बाज नहीं आते। ये थी आयत नंबर 85 से 89, 85 से 99। इन आयत का उन्वान है रूह की हकीकत। रूह का लफ्ज़ कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है 3 मानों में। रूह स्पिरिट्स को कहते हैं जो इंसान के जिस्म में आती है, तो जिस्म का ये बुत आबाद होने लगता है, मट्टी का बुत रूह के आने से आबाद होने लगता है। इसी तरह रूह का लफ्ज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि यही रूहें फूकते थे और हज़रत ईसा की पैदाइश इन्हीं से हुई। दूसरा ये कि वही को लाने वाले भी यही थे। तीसरा लफ्ज़ जो रूह के लिए इस्तेमाल हुआ है वो वही है, यहाँ वही मानी बनता है कि जिस तरह जिस्म के अंदर रूह पड़ती है तो जिस्म आबाद होता है, इसी तरह वही इलाही की रूह जब इंसानियत के अंदर आती है तो इंसानियत जिंदा होने लगती है। जो लोग इस कुरान का मुकाबला करना चाहते थे, अल्लाह ताला उनको चैलेंज करते हैं कि तुम ऐसा कलाम ले आओ अगर तुम लाना चाहो, लेकिन ये हमारा हुक्म है। और ये तीनों चीजें देखें अल्लाह के हुक्म से आती हैं। जिस्म में रूह कब आती है? जब अल्लाह चाहता है। जितनी मर्जी माँ बाप कोशिश करते रहे, बच्चा नहीं पैदा होगा जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर इसी तरह देखिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आते तो अल्लाह के नबी को मजा आता था, लज्जत मिलती थी, क्यों ना आए जिस जात के जरिए से कलाम मिलता हो, उसको देखना उसको मिलना भी इंसान के लिए इत्मीनान का जरिया बनती है ये बात। लेकिन जिब्राइल अपनी मर्जी से नहीं आते थे, तो अल्लाह के नबी ने एक दफा फरमाइश की कि जिब्राइल आप जल्दी जल्दी आया करें, यदि मेरा दिल चाहता है मैं आपको मिलूं। तो उस पर ये बात आ गई कि नहीं, ये अल्लाह के हुक्म से आती है। और इसी तरह वही का सिलसिला बाज दफा अल्लाह के नबी सल्लम, और ऐसा खास तौर पर हुआ एक मौके पर कि आपसे कोई सवाल पूछा गया, आपने कहा अच्छा भी मैं कल बता दूंगा, आपका ख्याल था जिब्राइल आते तो हाँ ये मैं पूछूंगा, इनशाला नहीं कहा, अल्लाह तला ने जिब्राइल को रोक लिया। फिर कितने दिन तक वही ना आई, और जब आई तो सूरत कहफ में आप इनशाला उसकी आयत पढ़ेंगे तो पता क्या चला कि अल्लाह ताला किसी को अपने कलाम को पढ़ाने या बताने के लिए भेज दे, ये भी अल्लाह का हुक्म होता है। और जिस्म में रूह का डलना भी अल्लाह के हुक्म से होता है। इसके अलावा जो इंसानी जिस्म के अंदर रूह होती है, ये क्या है? अल्लाह का हुक्म, कुन फयकुन। मट्टी का बुत होता है अल्लाह, उसमें कुन कहते हैं जान पड़ जाती है, और कुन कहते हैं रूह जो है जिस्म से निकल जाती है। फिर निशानियों की बात है। अब आप देखेंगे फिर लंबी लिस्ट है उनकी फरमाइशों की, क्या وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا। उन्होंने कहा हम आप पर हरगिज ईमान लाने के नहीं, यहाँ तक कि आप हमारे लिए जमीन से कोई चश्मा जारी न कर दें, या खुद आपके लिए ही कोई बाग हो खजूरों का और अंगूरों का, और इसके दरमियान आप बहुत सी नहरें जारी कर दिखाएं, या आप आसमान को हम पर टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें जैसा कि आपका गुमान है, या आप खुद अल्लाह कदालक और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा करें, या आपके अपने लिए कुछ सोने का घर हो जाए, या आप आसमान पर चढ़ जाएं। हम तो आपके चढ़ जाने का भी उस वक्त तक हरगिज यकीन न करेंगे जब तक आप हम पर कोई किताब ना उतार लाएं जिसे हम खुद पढ़ लें। आप जवाब दे दें कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ जो रसूल बनाया गया। वमा मनन्ना सयूमिनु इज्जाहुमुल हुदा। लोगों के पास हिदायत पहुंच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली सिर्फ यही चीज रही कि उन्होंने कहा अल्लाह ने एक इंसान ही को रसूल बनाकर क्यों भेजा। आप कह दें अगर जमीन में फरिश्ते चलते फिरते और रहते बसते तो हम भी इनके पास किसी आसमानी फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेज देते। कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला का गवाह होना काफी है, और वो अपने बंदों से खूब आगाह और बखूबी देखने वाला है। अल्लाह जिसकी रहनुमाई करे वो तो हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो राह से भटका दे नामुमकिन है कि तू इसका मददगार इसके सिवा किसी और को पाए। ऐसे लोगों का हम बरोज क्यामत औंधे मुंह हशर करेंगे। अल्लाह अकबर। दर हालांकि वो अंधे गूंगे और बहरे होंगे, इनका ठिकाना जहन्नुम होगा जब कभी वो बुझने लगेगी, हम इन पर इसे और ज्यादा भड़का देंगे। ये है हमारी आयतों से कुफर करने और इस कहने का बदला कि क्या जब हम हड्डियां और रेजे रेजे हो जाएंगे, क्या फिर हम नई पैदाइश में उठा खड़े किए जाएंगे। ये थी आयत नंबर 90 से 98। इसका अनुवान लिखिए, ना मानने के 100 बहाने। पूरी आयत एक ही थीम पे घूम रही थी, और वो क्या कि मुतालबे मांग रहे थे। अल्लाह ताला चाहे तो उन मुतालबों को पूरा करके उनकी बात पे आसमान से कोई ना कोई निशानी उतार दे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्यों ना निकाला कि क्योंकि अल्लाह ताला की आदत नहीं है कि किसी को पुतली तमाशा दिखाकर हिदायत की तरफ बुलाया जाए। देखिए, जो दीन निशानियों और मौजजात को देख के आता है ना, वो ऊपर ऊपर रहता है। ये ऐसे जैसे आप किसी को कोई उसका कोई एक ट्रिक दे के, कमाल दे के थोड़ी देर उससे मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर उसका असर चला जाता है। जो दीन दिल के रास्ते आता है ना, वो देर पा होता है। जिस चीज को आपका दिल मान जाता है ना कि ये ठीक है, फिर आप उस चीज से जम जाते हैं। वो चीज आप हमेशा खरीदते हैं जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है। एडवर्टाइजमेंट देख के कोई चीज आप खरीद लाएं, लेकिन बाद में क्या होगा, वो चीज आप बाद में दोबारा नहीं लेंगे। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। एक चीज है, बड़ी चमकती फुदकती हुई एडवर्टाइजमेंट देखी, आप वो प्रोडक्ट खरीद के ले आए, अब आपने खरीद लिया, अब देखा वो क्वालिटी तो थी नहीं, अगली दफा आप लेंगे, नहीं लेंगे ना। दूसरी सूरत है कि आप किसी चीज की इफादियत देख के उसको अपने घर में लाते हैं, तो आप हमेशा लाएंगे ना। बिल्कुल यही मिसाल है उन लोगों की जो पंप एंड शो ग्लैमरस दीन देखना चाहते हैं, जो अल्लाह के नबी को एक बहुत बड़ा हीरो बनाना चाहते थे। तो कहा, ये दीन ऐसा नहीं कि पुतली तमाशे दिखाए जाए, ये दीन तो दिल को टच करता है। अगर तुम्हें ऐसे मौजे मांगने हैं तो देखो, मौजे मांगने वाले कभी मांग के भी नहीं आते। बाज दफा देखिए, लोग मुतालबे करते हैं, अच्छा ये होगा तो फिर हम करेंगे ये काम, ये हो जाए तो ठीक है। जिन्होंने करना होता है वो बगैर किसी मुतालबे के करते हैं। अल्लाह ताला ने इन सब की ये बात बयान करके हम सबको ये कानून दे दिया कि हिदायत आने के बाद लोग दीन से जब रुकते हैं ना, तो उसकी वजह वो खुद होते हैं, ना कि अल्लाह का दीन है। बस जब आप कहते हैं हर मुमकिन तरीके से, तो आप किसी को बुला लिया, वो क्यों नहीं आता। अब ये भी मान ली उनकी बात, ये भी मान ली, ये भी मान ली, तो फिर ऐसे लोगों को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए ताकि वो मजीद सोच सकें और अल्लाह ताला फिर उनको इस चीज में ला सके। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ध, क्या उन्होंने इस बात पर नजर नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा किया, वो इन जैसों की पैदाइश पर पूरा कादिर है। इसी ने उनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शक को शुबे से यकसर खाली है, लेकिन जालिम लोग इनकार किए बगैर रहते ही नहीं। कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमतों के खजानों के मालिक बन भी जाते, तो तुम उस वक्त भी उसके खर्च हो जाने के खौफ से इसको रोके रखते, और इंसान है ही बड़ा तंग दिल। हमने मूसा को 9 मौजजात बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए, तो खुद ही बनी इसराइल से पूछ ले कि जब वो इनके पास पहुंचे तो फिरौन बोला कि ए मूसा, मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू कर दिया गया है। मूसा ने कहा, ये तो तुझे इल्म हो चुका कि आसमान और जमीन के परवरदिगार ने ही ये मौजजे दिखाने समझाने को नाजिल फरमाए हैं। ए फिरौन, मैं तो समझ रहा हूँ कि तू यकीनन तबाहो बर्बाद किया गया है। आखिर फिरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि इन्हें जमीन से ही उखेड़ दे, तो हमने खुद इसे और उसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। इसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमा दिया कि सर जमीन पर तुम रहो सहो, हाँ जब आखिरत का वादा आएगा हम तुम सबको समेट और लपेट कर ले जाएंगे। ये थी आयत नंबर 99 से 104। इनका उन्वान है, एक बार फिर बनी इसराइल का तذکرہ। सूरत के आगाज में अपने बनी इसराइल की तारीख की कुछ बातें सुनी, बीच में वो सारे अरूज व जवाल थे जिसकी वजह से कौमों का इक्तदार एक से दूसरे हाथ में दिया जाता है। अब आखिर में दोबारा बनी इसराइल के नाते से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा आना, ये उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक गहरी चोट है कि देखो, अगर पिछलों ने ना माना उनके साथ जो हुआ, आज तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानोगे, तुम्हारा यही हाल होगा। कल किसी ने मूसा के अस्सा को ना माना और यद बैसा को ना माना, और अगर आज तुम अल्लाह के इस कलाम को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ भी यही किया जाएगा। और वाकई आयात पढ़ के मक्का वालों के दिलों पे चोट तो पड़ती थी, ये अलग बात है कि फिर बहुत सारे लोग उसके बाद भी ना समझे। आखिर में अब अल्लाह ताला कुरान पाक के नाते से तौहीद को बयान करते हैं, क्या बबिल हक की अनज़लनाहू वबिल हक की नज़ल, और हमने इस कुरान को हक के साथ उतारा और ये भी हक के साथ उतरा। हमने आपको सिर्फ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे बमोहलत लोगों को सुनाएं, और हमने खुद भी इसे बतदरीज नाजिल फरमाया है। आप कह दीजिए कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया इनके पास तो जब भी इसकी तिलावत की जाती है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। वयकुलूना सुबहाना रब्बिना इनकाना वादु रब्बिना लमफ़ऊला, और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला शक व शुबा पूरा होकर रहने वाला है। वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं। और ये कुरान इनकी आजजी और खुशू और खुदू बढ़ा देता है। खुलिदुल्लाह अविदुर्रहमान, कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। ना तो तू अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज से पढ़ और न बिल्कुल पोशीदा, बल्कि इनके दरमियान का रास्ता तलाश कर। और क्या कहो, वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदं वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्क, और आप ये कह दीजिए कि तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं जो न औलाद रखता है और न अपनी बादशाहत में किसी को शरीक और साझी रखता है, और न वो कमजोर है कि इसे किसी हिमायती की जरूरत हो, और इसकी पूरी पूरी बड़ाई बयान करता रह। ये थी आयत नंबर 105 से 111, 105 से 111। इसका उन्वान है, कदर वालों को इस दीन की कदर है। बनी इसराइल के तस्करे में ऐसे लोगों का तस्करा कि जो इस कलाम की कीमत पहचान लेते थे, इशारा है उन चंद यहूद की तरफ जो मुसलमान हो गए थे। अल्लाह ताला हर अंधेरे के अंदर कोई ना कोई रोशनी की किरण जरूर रखता है कि जहां सबने छुटलाया वहां कुछ लोग जो थे वो मानने वाले हो गए, और ऐसे लोग फिर इस कुरान को सुन के झुक गए, मान गए, और अल्लाह ताला ने फिर उनके सीनों को खोल दिया। सूरत का इख्तिताम बड़ा खूबसूरत है। अगर आप गौर से देखेंगे तो सूरत का आगाज था सुबहान अल्लाह से, सुबहान अल्लज़ी। सूरत का आखिरी लफ्ज क्या है, कब्बिरहु तकबीरा, यानी अल्लाह अकबर। और अगली सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजल लहू इवजा, अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज से। क्या देखा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर। ये जो आखिरी आयत है सूरत की, इसको आयते इज्जत भी कहते हैं। इसके बारे में चंद रिवायात आती हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन बास कहते हैं कि ये आयत जो है वाकई अल्लाह ताला ने तकरीम और इज्जत रखी है। तो अल्लाह ताला हमें इस पूरी सूरत के मानों पे और इसके मफहूम पे गौर करने वाला बना दे, और वाकई इसके ऊपर सबक लेने के लिए फर्द से ज्यादा उम्मत को सोचने की जरूरत है। ये पूरी सूरत जो थी खास तौर पे उम्मत मुस्लिमा को बनी इसराइल की तारीख से सबक लेकर अपने लिए नए रास्ते मुंतखब करने की दावत देती है कि उनके नक्शे कदम पे मत चलो कि जो आज खुद भी दुनिया में नीस्तो नाबूद है। आज देखिए कि उम्मत मुस्लिमा कितना कसरत से कुरान पढ़ती है। आज भी आप देखिए कि हर मस्जिद में तरावी के अंदर एक दफा तो कुरान पाक खत्म होता है, और मैं सोचती हूँ कि सिर्फ सूरह बनी इसराइल ही आज के दौर में इन मुआशरों में रहने वाले लोगों को पढ़ा दी जाए कि जहाँ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है इन कौमों के साथ, तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह करे कि इस शऊर को बेदार करने में हम अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डाल सकें।